बताओ क्या करना चाहते हो?
हम लड़ना चाहते हैं, हम अपने अजीजों के खून का बदला लेंगे।
उन्होंने मेरे दो बच्चों को मारा है, मैं जब तक उनके दस को ना मार लूं चैन से नहीं बैठूंगा।
ठहरो ठहरो, सब्र से काम लो। हम सब अबा मोहम्मद के शिया है, उनके हुक्म के मुताबिक अमल करेंगे। हसन इब्ने अली ने मुआविया के साथ जो अहद किया है वो उस पे बाकी है, वो हमें खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देते।
कौन सा अहद?
मुआविया ने तो ऐलान किया है कि इस अहद का पाबंद नहीं रहेगा।
क्या तुम लोग वहां नहीं थे? नहीं सुना तुम लोगों ने कि मुआविया ने क्या कहा था?
हम भी उधर ही थे और हमने भी सुना उसने क्या कहा, और जो सुना था हसन इब्न अली को बता दिया। उन्होंने फरमाया कि हमारा रास्ता मुआविया से अलग है, हम अहद नहीं तोड़ेंगे।
जिस दिन हसन इब्न अली ने अहदनामे पे मोहर लगाई थी तो उसी वक्त समझ गए थे अबू सुफियान का बेटा अपने अहद पे बाकी नहीं रहेगा। फरजंद रसूल खुदा के पास दलीलें हैं और वो उसी पे बाकी हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है, हमें सब्र से काम लेना चाहिए।
कब तक?
जब तक लाजिम हो।
अगर अबा मोहम्मद के शिया हो तो इताअत के अलावा कोई चारा नहीं, मगर अहद चिकनी कर लो।
तो तुम लोग क्या करोगे?
हम समझ रहे थे कि तुम लोग फौज जमा कर रहे हो ताकि मुआविया के मुकर्रर करदा हाकिमों का मुकाबला किया जा सके।
तुमने गलत सुना है, ये पनागाह जख्मी लोगों के लिए, मजलूमों और बेपनाह लोगों के लिए है। हम तो कोशिश करते हैं कि जख्मियों की अच्छी तरह मरहम पट्टी हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
हाँ, अगर खुदा चाहे और अबा मोहम्मद हुक्म देंगे तो उस वक्त अपने वजीफे पर किसी और तरीके से अमल करेंगे। अब उठो जाओ।
ऐसा लगता है कि कहता पड़ा है जो तुम लोग भूखों की तरह खा रहे हो।
हसन इब्न अली के घर का खाना हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं।
हाँ, इन दो दिनों में नमक रोटी और चंद खजूरों के अलावा हमारे हलक में कुछ नहीं उतरा।
मुझे खुशी है क्योंकि मैं मुतमईन हूं कि तुम लोग अपने पेट ही की खातिर सही अपने काम को जल्द से जल्द निपटा लोगे।
लेकिन सरदार जो 1 करोड़ हमें देंगे, इससे कहीं ज्यादा उम्दा और लजीज खाने खाएंगे।
वो 0.5 करोड़ कहाँ है?
ओ, वो तुम्हारे दोस्त के पास है, तुम्हारे दोस्त के पास है। मैं सही कह रहा हूँ शिमर?
हाँ, घबराने की बात नहीं है।
तुम लोगों ने अपने दोस्त से कुछ कहा है जो वो इस तरह परेशान दिखाई दे रहा है?
नहीं, कोई खास बात तो हमने उससे कही नहीं है। हमने हसन इब्न अली के घर का मुआयना किया, जाहिरन मुमकिन नहीं है कि कोई उन्हें जख्मी करके वहां से फरार हो सके।
या कम से कम तुमसे नहीं हो सकता।
नहीं, हमने कहा जहर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि खवातीन उधर घर के अंदर ही पकाती हैं और फौरन कमरे में ले जाती हैं, और उनके खाने में जहर डालना नामुमकिन है।
तो फिर तुम किस ख्याल में हो?
लेकिन हम बहुत ज्यादा मायूस नहीं हैं। अलबत्ता मेरी बेटी जौदा इस मुश्किल को हल कर सकती है, लेकिन उसे राजी करने के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए।
वक्त?
वक्त तो हमारे लिए बहुत महंगा है, क्योंकि सरदार को पसंद नहीं कि अमीर मोमिन के हुक्म ताखीर हो।
बहुत खूब शिमर, बहुत खूब। हमारी जबान से बात करते हो।
सरदार, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मुतमइन रहो, हम उसको राजी कर लेंगे। हमें होशियार रहना चाहिए, कहीं वो हमें धोखा ना दे।
हाँ, सच कह रहे हो, उसके वादे का कोई एतबार नहीं। अल्लाह करे किसी ने हमें देखा ना हो।
हाँ,
मैंने कहा ना कि मशकूक लोग हैं। यहाँ से सीधा कसर मरवान गए, वहाँ 1 घंटा रहे और फिर इधर वापस आ गए।
कसर मरवान?
हाँ हाँ, मैंने खुद देखा कि बगैर किसी रुकावट के महल के निगहबानों के दरमियान से गुजर गए।
हमने उनको नहीं पहचाना?
नहीं, उन्होंने अपने चेहरे पे नकाब डाला हुआ था और आने जाने वालों से बच के निकल रहे थे। अहमद, हमें क्या करना चाहिए?
नहीं मालूम।
تم بے فکر رہو ابن عمیر، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، تنہا وہ کام نہیں کر سکتا، اس کام کے واسطے وہ ہمارا محتاج ہے، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔
ہمیں اس سے کہنا چاہیے کہ جو کچھ اسے ملا ہے ابھی تقسیم کرے۔
لیکن وہ سمجھے گا کہ ہمیں اس پہ اعتماد نہیں۔
سمجھنے دو۔
بیٹی تم اب تک جاگ رہی ہو؟
ہاں پدر، جاگ رہی ہوں اور منتظر ہوں۔
کس لیے منتظر ہو؟
اپنے باپ سے پوچھنے کے لیے کہ اس نے کیسے کسی کو میرا چچا بنا۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ تم لوگ اس گھر میں کیا کر رہے ہو اور کیا ارادہ رکھتے ہو۔
ہم نے کہا تھا کہ ہم یہاں پناہ کے لیے آئے ہیں۔
ہاں بتایا تو تھا کہ تمہارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ہاں کہا تھا تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ بتایا تھا کہ مروان اور معاویہ کے سپاہیوں سے خطرہ ہے۔ اب بتاؤ کہ کس طرح اس خوف و ہراس کے ساتھ ہر شب چوروں کی طرح سے گھر سے باہر نکلتے ہو، جبکہ تم لوگوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی تمہاری موجودگی سے آگاہ نہ ہو۔
ہم اس دوست کے پاس جا رہے ہیں جس پر ہمیں مکمل اطمینان ہے۔ بیٹی تم اطمینان سے رہو، ہم مکمل محفوظ ہیں۔
اس کون سا دوست؟
اس کا نام پوچھ رہی ہو؟
ہاں اس کا نام اور اس جگہ کا پتہ جہاں وہ رہتا ہے۔ بہتر ہے کہ ابا محمد سے کہوں گی کہ وہ خود آپ سے پوچھ لیں۔
جودا میری بیٹی، تم اپنے باپ سے اس طرح بات کرو گی؟
کیا مناسب ہے کہ تم اپنی بیٹی سے حقیقت چھپاؤ، اور وہ بھی ایسی بیٹی جو عقل و ہوش و ذہانت میں اپنے باپ سے کم نہیں ہے اور حقائق کا ایک حد تک اندازہ لگا سکتی ہے۔ تم نے کہا کہ شمر مروان کے محل میں موجود ہے، اس لیے کہ تم لوگ آپس میں بہت ہی گہرے دوست ہو، ایک دوسرے کی جدائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لہذا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تمہاری ملاقات کی جگہ مروان کا محل ہے، جو شمر کی دشمنی کے بارے میں داستان بتائی اور معاویہ کے غلاموں کے پیچھا کرنے کا خوف ظاہر کیا، وہ ایک جھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب حقیقت بتانا چاہتے ہو یا نہیں؟
میں کہتا ہوں بہتر ہے کہ ابا محمد کو ان دو مشکوک مہمانوں کے بارے میں بتا دیا جائے۔ نہیں، قیس نے ہمیں ابا محمد کے پاس جانے سے منع کیا ہے، مروان کے جاسوس ہر جگہ موجود ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں پہچان لے۔ بہتر ہے کہ ہم میں سے ایک قیس کے پاس جائے اور اسے سب کچھ بتا دے۔ کیا کہیں؟ کہیں کہ جو دو شخص ہمیں مشکوک لگتے ہیں وہ حسن ابن علی کے مہمان ہیں؟ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ نہیں، فی الحال بہتر ہے کہ صبر کریں اور ان دونوں کا پیچھا کرتے رہیں، شاید ہم ان دونوں کو پہچان سکیں۔
میں نہیں سمجھ سکی تم لوگ چاہتے کیا ہو۔
یہی کہ کچھ اپنے باپ کی بھی فکر کرو۔
میری فکر نہیں، بس تم اپنی فکر کرو۔ میں تمہاری طرف سے اگر بے فکر ہو جاؤں تو راضی و خوشی اپنا سر جلاد کی تلوار کے آگے کر دوں گا۔
میں کیا کر سکتی ہوں؟
تم اس گھر میں کیا ہو، مالکن ہو یا ایک حقیر سی کنیز؟
میں ان کی کنیز نہیں ہوں، میں ان کی بیوی ہوں۔
ایک عرب مرد کی نظر میں بانج اور بے اولاد عورتیں باورچی خانے کی کنیزوں سے بھی کمتر ہیں۔
لیکن ابا محمد ایسے نہیں ہیں، وہ بڑے مہربان انسان ہیں، میری زندگی کے مہربان ترین انسان۔
جودا تم میری بیٹی ہو، اشعث ابن قیس کی، اور سنو سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت امیر المومنین معاویہ ابن ابو سفیان کا ہم نشین اور ہم پیمان ہوں۔ تمہیں بادشاہ کے گھر کی عورت ہونا چاہیے، نہ کہ باورچی خانے کی کنیز۔ جانتی ہو معاویہ کبھی خلافت حسن ابن علی کو نہیں دے گا۔
یہ بات جھوٹ ہے، تم لوگ پھر جھوٹ بول رہے ہو۔
جودا میری بات سنو، میں اور تمہارا باپ معاویہ کے قریبی لوگوں میں سے ہیں۔ بنی امیہ نے تخت خلافت خون کے دریا سے اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ایک چمڑے کے عہد نامے کی خاطر کسی کے حوالے کر دیں۔ معاویہ کے بعد یزید ہی تخت خلافت پہ بیٹھے گا۔
پدر واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے؟
ہاں بیٹی، میری تمنا ہے کہ میری بیٹی زنانہ نے عرب کی ملکہ ہو، اور چاہتا ہوں کہ آراستہ محل میں زندگی بسر کرے۔ بہت ساری کنیزیں اطراف میں ہر وقت خدمت گزار رہیں۔ جبکہ اس وقت تمہیں اس گھر میں حقیر دیکھ رہا ہوں تو میرا دل پھٹا جا رہا ہے اور اپنی اس بےہودہ آرزو پر افسوس کرتا ہوں۔
تم نے تو خود یہ شادی لالچ میں کروائی تھی۔
ہاں بیٹی جودہ، اس وقت سوچا یہ تھا کہ یہ شادی تمہاری بھلائی میں ہے اور سمجھ رہا تھا کہ حسن ابن علی اپنے باپ کی خلافت کو سنبھال لیں گے، لیکن میں نے کوئی غلطی نہیں کی، مگر زمانہ اس سے بدل گیا اور اب میں نہیں چاہتا کہ اس کی بد نصیبی کا خمیازہ میری بیٹی بھگتے، اور نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی دن ایسا آئے کہ میری بیٹی حسن ابن علی کی بیوی ہونے کے جرم میں اسیر ہو اور کنیزی میں بیچ دی جائے۔
تم سوچتے ہو کہ میرا مقدر ایسا ہی ہوگا؟
ہمیں لگتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ کوئی جواب نہیں دیا۔
میں جواب دوں گی۔
کب تک؟
بہت جلدی، تھوڑا سا سوچ لوں۔
تربوز خرید لو، آؤ آؤ۔
نہیں بھائی رہنے دو، نہیں معلوم کیسے ہیں، اچھے ہیں میٹھے ہیں، ابھی رہنے دے، پھر آ جائیں۔
سلام اے عظیم سردار۔
ہاں ابن جمیل، کیسے یاد کر لیا ہمیں؟
ہم امیر کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اور اپنے آپ کو امیر کا احسان مند سمجھتے ہیں۔
اچھا تو کیا خبر لائے ہو؟ بصرے کی کیا خبر ہے؟ بصر ابن ارتاد کیا کر رہا ہے؟ کیا اب بھی وہی قتل عام چل رہا ہے؟
نہیں سردار، فارغ ہو گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص کے جس کا خوارج یا شیعوں سے کسی قسم کا رابطہ تھا، یا انہیں مار چکا ہے، یا وہ بھاگ گئے ہیں، یا دمشق کی طرف جا رہے ہیں۔
کیا دمشق کی طرف؟
جی سردار، میں یہی خبر دینے کے لیے آیا ہوں کہ اہل بصرہ بھاگے بھاگے دمشق کی طرف جا رہے ہیں تاکہ معاویہ کا دیدار کر سکیں۔ بصر ابن ارتاد نے شہر کے تمام بزرگوں اور اشراف سے کہا ہے کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو امیر المومنین کے ساتھ تجدید بیعت کے لیے دمشق کی طرف جاؤ۔
تجدید بیعت؟
جی سردار، میں نے سوچا آپ کو اس واقعے سے آگاہ کر دوں، اسی لیے بصرہ سے مدینے تک لگاتار گھوڑا دوڑایا ہے۔
اچھا کیا، تمہارا انعام میرے پاس محفوظ ہے، اب جاؤ ذرا آرام کرو اور پہلی فرصت میں بصرے کی طرف پلٹ جاؤ، اور اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ حالات پہ نظر رکھو، اس کی خاطر کی جائے۔ تم نے سنا شمر؟
ہاں سن لیا ہے۔ کیا یہ حرکت کوئی خاص معنی رکھتی ہے جو سردار اس قدر پریشان ہو گئے؟
ہاں، تجدید بعث صرف ایک بہانہ ہے، بصر چاہتا ہے کہ لوگوں کے خوف و ہراس سے فائدہ اٹھائے اور امیر معاویہ کی موجودگی میں یزید کی بیعت کے مقدمات کو فراہم کرے۔
سمجھتا ہوں، اگر وہ کامیاب ہو جائے تو امیر کے سامنے تمہاری شرمندگی کا سبب ہوگا۔
صحیح کہتے ہو،
یہ کام آسان ہے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے لالچ دے کے جمع کرو اور انہیں دمشق کی طرف روانہ کر دو، پھر اس وقت بصر میدان کا تنہا کھلاڑی نہیں بن سکتا۔
ہاں ہاں میں کر سکتا ہوں، لیکن جیسے ہی امیر کی نظر مجھ پر پڑے گی سب سے پہلے وہ حسن ابن علی کے بارے میں سوال کریں گے، اور چونکہ میرے پاس کوئی قانع کنندہ جواب نہیں ہے وہ ناراض ہوں گے، مجھ سے سختی سے باز پرس کریں گے، اور اس وقت تک مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کریں گے جب تک ان کا حکم نافذ نہ ہو جائے۔ اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو تو یاد رکھو، میری یہ موجودہ مشکل تمہارے دوستوں کے وعدہ خلافی کے نتیجے میں۔
اگر سردار کی مراد خوارج ہیں تو مجھے عرض کرنے دیں کہ
अनजान बनने की कोशिश ना करो। मैंने खवारिश को पैसा नहीं दिया है, तुम्हें उर्वा को और उस धोखेबाज अशअस को पैसा दिया है मैंने, ताकि जो काम तुमने अपने जिम्मे लिया है उसको पूरा करो।
यकीनन ये लोग अपने वजीफे की अंजाम दही में मसरूफ हैं, लेकिन ये काम वक्त चाहता है।
अब वक्त कहां बचा है? माविया ने मेरी नींद हराम कर रखी है। मैं जानना चाहता हूं उन्होंने क्या किया।
खुद उनसे पूछो, आज रात जब वो
आज रात नहीं अभी इसी वक्त। निगहबान। कुछ सिपाही हसन इब्न अली के घर भेजो और अशास और उर्वा को यहां लेकर आओ।
को हिरासत में ले आओ।
हिरासत में क्यों?
इसलिए कि अगर लोग जान लें कि वो हमारे साथ मरबूत हैं, तो वो लोग फिर उस घर में नहीं जा सकेंगे।
ठीक है, ऐसा ही करो।
थे
हाँ, इनमें से एक ने मदाइन में फितना बर्पा किया था और अबा मोहम्मद के खेमे को आग लगाई थी।
अबा मोहम्मद के घर में ये क्या कर रहे हैं? चलो अंदर।
ये लोग कौन है?
इन्होंने कहा कि हम इनको आपके हुजूर पेश करें।
अमीरुल मोमिनीन के दुश्मनों में से हैं।
इब्ने हकम, और से देखो, इन दोनों को जानते हो?
नहीं, ना पहचानता हूं ना पहचानना चाहता हूं। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त भी नहीं।
सरदार, तुम पहचानते हो इनको?
पहचानता हूं अच्छी तरह, और ये लोग भी मुझे जानते हैं। हमने पहले एक दूसरे को देखा है। क्यों? ये दोनों हारिस के बेटे हैं।
हारिस?
वही कैदी जिसकी कूफे में गर्दन उड़ा दी गई। ज़ाहिरन इस शहर में हसन इब्न अली के तरफदार इससे कहीं ज्यादा हैं कि जितना हम तसव्वुर करते हैं।
हारिस के बेटे मदीने में?
हाँ, मुझे कोई शक नहीं है। खोलो अपनी जबान और बात करो।
और मुग़ैरा ने इनके सर पे इनाम रखा है,
100 सोने के सिक्के।
तुम्हारे और भाई कहाँ हैं? वो ईरानी गुलाम कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है? सरदार, इनका क्या करेंगे?
नहीं मालूम, इन बचकाना हरकतों का वक्त नहीं है अभी हमारे पास। निगहबान, दोनों अहमकों को निकाल के बाहर करो। मैं ये जानना चाहता हूं तुम लोगों ने क्या किया है अब तक।
सरदार, ये दिन धाड़े तुम हमें यहां क्यों लाए हो? हम तो वहां छुपे हुए थे।
मैं तुम लोगों की इन हरकतों से थक चुका हूं।
जरा सब्र से काम लें।
मैं एक दिन भी सब्र नहीं कर सकता हूं। क्या क्या है तुमने अब तक?
सरदार सब्र कीजिए।
कैसे सब्र करूं? माविया क्या क्या करूं? उनसे क्या कहूं? क्या उनके पास इतना हौसला है? मैं शाम जाना चाहता हूं, लेकिन इतनी जुर्रत मुझ में नहीं कि मैं शाम की तरफ हरकत कर सकूं, क्योंकि जैसे ही मैं उनकी नजरों के सामने आऊंगा वो मुझसे सवाल करेंगे। जवाब दो, क्या किया है तुमने?
सब्र करना पड़ेगा, जरा हौसले से काम लें।
मुझ में बिल्कुल हौसला नहीं है। जो कुछ तय होना है वो आज ही तय होगा। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो साफ कहो, मैं कुछ और सोचूंगा।
जैसे क्या?
तीरंदाजों का सहारा लूंगा, जंगजुओं को मैदान में ले आऊंगा, या हर एक को मुंह मांगा दूंगा, या कुछ और।
अमीर माविया तमाम रास्ते आजमा चुके, भूल गए? मस्जिद कूफा में तीर चलाया गया और साबात में जर्राह बिन समन को उसके कत्ल पे मामूर किया, नहीं देखा क्या हुआ?
बिलाखिर एक रास्ता निकाल लूंगा, एक लश्कर को उसके घर की तरफ भेजूंगा। और
सरदार, अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि इस माजरे में मेरा नाम ना आए।
आखिर कोई रास्ता तो होगा।
हाँ, एक रास्ता है।
कौन सा रास्ता?
मेरी बेटी जौदा तैयार है कि वो ये काम तमाम कर दे।
वो तैयार है?
हाँ तैयार है, लेकिन एक शर्त भी है।
शर्त? कैसी शर्त?
ये कि काम के तमाम होने पर मेरी बेटी जौदा यजीद इब्ने माविया की ज़ौजियत में आ जाए।
यह आखिर कौन सी शर्त है?
वो बरसों से दिल में ख्वाहिश रखती है कि जनाना ने अरब की मलिका बने। बस अब कुछ ही वक्त है कि वो अपनी मुराद को पहुंच सकती है। हसन इब्न अली खिलाफत तो हवाले कर चुके, अब वो सोचती है कि उसकी मुराद पूरी होने का फकत यही रास्ता है।
यह शर्त मैं हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। दर हकीकत इसका इख्तियार मेरे पास नहीं है।
मेरी बेटी अच्छी तरह जानती है कि सरदार को इस किस्म का कोई इख्तियार नहीं, इसीलिए तो वो चाहती है कि अमीरुल मोमिनीन खुद उसकी जमानत दें।
यह मुमकिन नहीं है।
क्यों नहीं सरदार? मुमकिन है। अमीरुल मोमिनीन बेहतर जानते हैं कि मेरी बेटी की यह फिदाकारी काबिल तसव्वुर नहीं। मैं नहीं समझता कि उसकी इस फिदाकारी के इवज में उसकी यह मामूली सी ख्वाहिश पूरी ना की जाए।
मामूली सी ख्वाहिश? मामूली सी ख्वाहिश? तुम्हारी बेटी अमीरुल मोमिनीन के बेटे के साथ शादी करना चाहती है और तुम कहते हो छोटी सी ख्वाहिश?
जो काम मेरी बेटी जौदा को सुपुर्द किया गया है, अगर उसका मुआवजा किया जाए, उसके मुकाबले में उसकी दरख्वास्त बड़ी नहीं है।
अच्छा शख्स, सच सच बताओ, यह ख्वाहिश तुम्हारी है या तुम्हारी बेटी जौदा की ख्वाहिश?
ख्वाहिश तो उसी की है। अगर हकीकत जानना चाहो तो मैं उसकी दरख्वास्त इंसाफ से दूर नहीं समझता।
तुमने वाकई सच्ची और इंसाफ की बात की है, पर क्या ऐसा हो सकता है?
इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
फिर तो ठीक है।
क्या हो गया?
मरवान जल्द ही मदीना के शरफा के साथ दमिश्क रवाना होगा। तय हुआ है कि वहीं अमीर से लाजमी जमानत ली जाए
क्या हम उसकी बात पर एतबार कर सकते हैं?
हाँ, अगर अमीर वादा करे तो वो उसे जरूर पूरा करेगा। फिलहाल हम उसके साथी और हम पैमान हैं, ये बात उसी की है। वो हमारे साथ कभी भी मक्कारी नहीं करेगा।
उसे हमारी जरूरत है।
और अबा मोहम्मद मदीने में फंस के रह जाएंगे। कोई बात हो गई क्या?
नहीं, कोई खास बात नहीं।
जौदा, मुआविया के बाद अबा मोहम्मद नहीं बल्कि उसका बेटा यजीद तख्त खिलाफत पे बैठेगा।
और अबा मोहम्मद मदीने में फंस के रह जाएंगे और तुम्हें कनीज की मानिंद बे औलाद ऐसे शख्स के घर में पड़ी रहोगी जिसे दुनिया और लोगों ने छोड़ दिया है
और उसका कोई यारो यावर नहीं।
हम अमीर के जवाब आने तक इंतजार करेंगे।
के साथ नहीं थे, हम दोनों दमिश्क में थे।
झूठ बोलते। उस महल्ले का दुकानदार बता रहा था कि तुम तीन आदमी थे और हमेशा एक साथ रहते थे, ठीक? तुम्हारा तीसरा आदमी कहाँ है?
तुम गलती पे हो, हम दो ही थे।
झूठ बोलते। एक और सवाल, हारिस के चार बेटे थे, तुम्हारे दूसरे दो भाई कहाँ हैं?
याकूब मदाइन में शहीद हो गया था उसी फितने में जो तुम्हारे पुराने दोस्त इब्ने उमैर ने बर्पा किया था।
ठीक, दूसरा कहाँ है?
नहीं मालूम।
क्या तीसरा वो नहीं जो तुम्हारे साथ था?
नहीं, हमारे साथ कोई नहीं था।
एक और सवाल, तुम्हें कब पता चला कि अशस और इब्ने उमैर हसन इब्ने अली के घर में ठहरे? उन्हें कैसे पहचाना? कैस और सईद से कैसे राबिता करते हो? क्या तुम्हारा भाई अशस और इब्ने उमैर की रिहाइश की खबर देने के लिए कैस के पास नहीं गया था?
हम नहीं जानते।
झूठ बोलते। अगर बताना चाहते हो तो मुझे खबर दो।
हम कुछ नहीं जानते, हमें कोई खबर नहीं।
बिल्कुल जानते हो, बस मुझे बताना नहीं चाहते हो। लेकिन इसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो जल्द या देर एक एक करके शहर का दरवाजा उबूर करके शहर की तरफ बढ़ेंगे। तुम लोगों से भी बेखबर, और जब सुनेंगे इब्ने उमैर और अशस हसन इब्ने अली के घर में बैठे हैं तो बिला शुबा घबराते हुए मदीना आ जाएंगे।
एकदम से सिपाही मोहम्मद और साले के करीब आए और उन्हें बिला वजह पकड़ के ले गए।
यानी उन्हें गिरफ्तार कर लिया?
लगता है इब्ने उमैर और अशस ने इनकी शिकायत की है। अलबत्ता मुझे यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन जब उन्हें दारुल हुकूमत ले जा रहे थे तो साले और मोहम्मद को भी गिरफ्तार कर लिया। अब हम क्या करें, क्या करें? इब्ने उमैर और अशस हसन इब्ने अली के घर में क्या कर रहे हैं? क्यों इन दोनों खवारिज को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और फिर वापस कर देते हैं? इन वाकयात ने मुझे परेशान कर दिया है। मुझे हसन इब्न अली की जान की फिक्र हो रही है। मुझे डर है कि इसके पीछे दुश्मन की कोई चाल है।
इसके अलावा भी कोई बात है जो तुम नहीं जानते?
सलाम हुजर, मुझे माफ करना, मैंने तुमको बिल्कुल नहीं देखा, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है।
वो तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी हालत बता रही है। अशस इब्न कैस जौदा का बाप है, जो हसन इब्न अली की बीवी है।
अबा मोहम्मद की बीवी का बाप?
हाँ, तुम्हें पता नहीं है?
नहीं।
बहरहाल इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम्हारे कहने के मुताबिक जरूर कोई चाल है। अशस हसन इब्न अली के खानदान से निस्बत के बावजूद रसूल अल्लाह की इतरत का दुश्मन था और अली मुर्तजा के कत्ल में शरीक था। अब उसका यहां होना खौफनाक है।
अहमद की बातें सुनकर मैं बहुत खौफजदा हो गया हूँ। मेरे ख्याल में बेहतर है कि हम में से चंद लोग मदीने हसन इब्न अली के पास जाएं और उन्हें शहर छोड़ने का मशवरा दें।
हाँ, अगर खतरा दरपेश हो तो उसे बरतरफ कर सकें।
हम थोड़े से लोग इतने बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते।
चलो फिर मदीने पे हमला करके शहर पे कब्जा कर लेते हैं।
अबा मोहम्मद की इजाजत के बगैर। इसके अलावा हम में ताब भी नहीं है। चंदर बदर औरतों और बच्चों के साथ क्या काम हो सकता है?
तुम क्या समझते हो?
कहीं ऐसा ना हो कि हम धोखे में आ जाएं।
कैसा धोखा?
शायद इन तमाम हरकतों का मतलब हमें मदीने की तरफ खींचना है। हमारे शहर में दाखिल होते ही मरवान और उसके सिपाही हमारे इंतजार में होंगे।
अरे हाँ, मैं बताना भूल गया कि मरवान जल्द ही मदीने से निकलने वाला है।
मदीने से?
वो मदीने के ओहदेदारों के साथ दमिश्क जा रहा है ताकि माविया की बैत कर सके।
बैत करे?
कैसी बैत?
मुझे क्या मालूम।
अगर मरवान शहर से निकल जाए तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है। सबसे पहले उसके निकलने का यकीन हो जाए मदीने से।
मेरी नींद हराम कर दी है। क्या सुबह तक नहीं रुक सकते थे?
अभी खबर मिली है कि मरवान मदीने के शुरफा और बुजुर्गों के हमराह यजीद की बैत के लिए दमिश्क रवाना होना चाहता है।
यह ऐसी कौन सी अहम बात थी जिसके लिए मुझे नींद से उठा दिया है?
हाँ, अहम खबर थी। तुम्हारे ख्याल में मरवान इतनी जल्दी क्यों दमिश्क जाना चाहता है? ताज्जुब है, इतनी जल्दी की वजह क्या है?
मुझे क्या पता।
चाहता है कि हमसे पहले अमीर का हुक्म तामील हो जाए।
हुक्म? कैसा हुक्म?
यही कि शुरफा और बुजुर्गों को यजीद की बैत के लिए तैयार करे और इस तरह खुद को अमीर के करीब करना चाहता है। और अगर मरवान हमसे पहले इस काम में कामयाब हो जाए तो यकीनन अमीर इसे हमारी नालायकी समझेंगे।
ठीक कह रहे हो, पर अब करना क्या चाहिए? क्या करें?
सफर की तैयारी करें और कूफे के बुजुर्गों और रुआसा को अमीर की खिदमत में ले जाएं ताकि मरवान हम पे सबकत न ले सके। हमें उससे पीछे नहीं रहना चाहिए, जितना जल्दी हो सके काम शुरू कर दें।
अगर ना आए तो?
तो फिर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। साजिशी अनासिर और लश्कर पर हमला करने वालों की तलाशी के बहाने उनके घरों को जला देंगे। वही काम करेंगे जो मरवान ने किया है और इतना दबाव डालेंगे कि खुद पैदल दमिश्क जाने पर मजबूर हो जाएं।
ठीक है, तुम लोग जाओ और इस काम की जिम्मेदारी लो और जो कुछ भी बेहतर समझो उसे अंजाम दो। हाँ, तुम लोग आज रात ही शुरू करना चाहते हो?
हाँ, रात को तबल बजाएंगे, शोर व गौगा करेंगे, सिपाहियों को उनके दरवाजों पर भेजेंगे, इतनी दहशत फैला देंगे कि वो खुद अमीर से मिलने की इल्तिमास करें। क्या तुम राजी नहीं हो?
हाँ, क्यों नहीं। तुम लोग कूफियों पर हुकूमत करना मुझसे बेहतर जानते हो।
हाँ, हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं।
मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने शोरगुल में मुझे नींद कैसे आएगी।
जाओ ना।
हो गया पिदर।
पानी, थोड़ा पानी पिला दो।
पिदर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने सोचा, बहुत अच्छी तरह सोचा। ये वहशतनाक ख्याल मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती पिदर, ये काम मेरे बस का नहीं है। आज मैंने अबा मोहम्मद के चेहरे की तरफ देखा, मैंने सोचा कि मैं उनका सबब ना बनूं।
क्यों नहीं, ये तो तुम कर सकती हो।
नहीं पिता, बिल्कुल नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती।
मरवान अभी रास्ते में है, जल्द ही अमीर के वादे के हमरा दमिश्क लौटेगा। माविया के महल के लिए सोचो, उन खुशी के अय्याम का जो तुम्हारे इंतजार में है। अब तुम जाओ। मुझे तनहा छोड़ दो, मेरे दिमाग पे बहुत बोझ होगी। बेटा, फिर सुबह को बात करेंगे।
पिदर, इब्ने उमेर कहाँ है?
दारुल हुकूमत में है शिमर के साथ। मेरा हाल अच्छा नहीं है, अब मुझे आराम की जरूरत है।
इन भाइयों ने बसरे से खबर दी है कि बुसर और मुगैरा दमिश्क की तरफ जा रहे हैं।
हाँ हर, क्या खबर लाए हो?
मरवान बुजुर्गों और सिपाहियों के हमराह मदीने से निकल गया है और दमिश्क की तरफ जा रहा है।
लो पानी पियो और दिल ठंडा करो।
हमने बहुत दूर तक उनका पीछा किया, वो दमिश्क ही जा रहे हैं।
बसरे से खबर दी है कि बुसर और मुगैरा दमिश्क के रास्ते में। मेरा ख्याल है कि अब माविया यजीद की बैत का मुकदमा फराहम करेगा।
यजीद के लिए बैत? लेकिन उसने सुल्ह नामे में वादा किया है कि अपने बाद कोई जानशीन मुकर्रर नहीं करेगा।
खुद उसी ने कहा है कि सुल्ह नामा मेरे कदमों के नीचे।
वो मुसलमानों का क्या जवाब देगा?
कुछ नहीं, वो अपना असली चेहरा जाहिर करेगा और ये वही चीज है जो हसन इब्न अली चाहते हैं।
अब समझ में आता है कि उसके दिमाग में क्या है और क्या करना चाहता है।
अब हकीकतन अबा मोहम्मद की जान खतरे में है। मुआविया के पास यजीद को तख्त खिलाफत पे बिठाने के लिए यही रास्ता है कि उनको रास्ते से हटा दे।
हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मेरा भी यही ख्याल है। अब अबा मोहम्मद को हमें जल्द ही बाहर निकालना होगा। मैं, सईद, हर्ब और अहमद मदीना जाएंगे। अगर कुछ दिनों तक कोई खबर न मिले तो सब मुंतशिर हो जाना और अपने आप को छिपा लेना। चलो,
आप लोग बैठे हैं, हम चले जाएंगे।
सरदार, सरदार, सूरज निकल गया, दरवाज़ा खोल दूँ? दरवाज़ा खोल दूँ सरदार? सरदार, दरवाज़ा खोल दूँ? दरवाज़े के बाहर लोग जमा हो गए हैं।
खोल दे।
ओ दरवाजा खोल दो।
सच पूछो तो वो जानता है कि वो मर्द मैदान नहीं, पर अगर सच्चा है तो मुकाबले के लिए तैयार हो जाए।
अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला।
अलैकुम अस्सलाम। अंदर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है।
पहले पानी पिलाओ फिर बात करूंगा।
पानी भी पिला देंगे।
सलाम।
शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी।
घोड़ों को यही मार देते हैं।
हाँ ठीक कह रहे, पैदल जाएंगे तो लोगों की तवज्जो हमारी तरफ कम होगी।
Sadness.